सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नए शिखर पर भारत के निर्यात विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक जयंत रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 6% से अधिक उछाल दर्ज करता हुआ 824.9 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। इस उत्साहजनक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो रॉय चौधरी। जयंतो, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
जयंतो। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़े आए हैं, हम लोग 820 बिलियन डॉलर्स के लेवल को क्रॉस कर गए हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स, और वो भी ऐसे समय पर जब जो ट्रेड एनवायरमेंट है ग्लोबल, उसमें कई संकट उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन फिगर्स को?
बहुत उम्दा फिगर है। यद्यपि ये बात सत्य है कि हमारी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मतलब जो हम सामान बेचते हैं, उसमें आप अगर देखें तो 0.08% की बढ़त हुई है, फ्लैट ग्रोथ कह सकते हैं। परंतु आपकी सर्विसेज सेक्टर बहुत बढ़िया किया है, करीबन 390 बिलियन डॉलर की आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। उसीलिए आपको ये 5.5% की छलांग मिल रही है। दूसरी बात जो है, आपको याद रखने पड़ेगा कि अगर आप सामान जो बेचते हैं उसके बारे में भी हम सोचते हैं, तो दो किस्म के सामान हम बेचते हैं। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारे जितने रिफाइनरीज हैं वो तेल, कच्चा तेल लेके उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बना के बेचते हैं। दूसरा है बाकी सारे सामान, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी या रेडीमेड गारमेंट।
बाकी सामान में 6% की
बाकी सामान में 6% की बढ़त हुई है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है, खास तौर से क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो ट्रंप साहब की टैरिफ्स की धक्का, जो बहुत बड़ी धक्का है, और दूसरी क्योंकि हमारे जो मुख्य जो बाजार हैं, यूरोप बोलिए या यूएसए बोलिए, इन सब जगहों में एक मंदी की आलम छाई हुई थी। नेगेटिव ग्रोथ कहीं कहीं हो रहा था, कहीं कहीं के ग्रोथ जस्ट हो ही रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इन हालातों में हम बेच पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये आंकड़े पढ़ने में मुझे खुशी होती है थोड़ी सी। एक तो इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, 6.7%, परंतु 117 बिलियन डॉलर की हमने बिक्री की है। भारतवर्ष अब सिर्फ चावल दाल बेचने वाला नहीं है, इंजीनियरिंग गुड्स हमारा बहुत बड़ा एक चीज है, सबसे बड़ा कह सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट्स 21.2 बिलियन डॉलर हमने बेचा है, इसमें बढ़त हुई है आपको 5.5% की। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जिसमें बहुत उछाल उठी है, 32.5% की आपने आंकड़ा पार किया है, परसेंटेज ग्रोथ किया है आपने, 38.6 बिलियन डॉलर से रोजगार किए हैं। रेडीमेड गारमेंट, उसमें आपने 16 बिलियन डॉलर, बहुत दिनों के बाद आपने रोजगार किया है। इसका कारण खास तौर से ये है क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अचानक ही सरकार पलट गई, आपको मालूम है, अगस्त के महीने में, और उसके बाद वहाँ पे दंगा फसाद हुए, फैक्ट्रियां जले, वो जो ऑर्डर्स थे क्रिसमस से पहले वो पूर्ण नहीं कर पाए और वो ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। लकीली हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे कारीगर हैं, इतने अच्छे कंपनियां हैं, जो उन ऑर्डर्स को जल्दबाजी में तुरंत ही निकाल पाए हैं, और इसीलिए हमको 10% का वहां पे एक ग्रोथ मिला है। पर आगे जाके हमको ये ग्रोथ मेंटेन करना है, उसके लिए हमको बहुत सारा काम करने पड़ेगा। रेडीमेड गारमेंट के लिए हमको और बाजारों में ढूंढने पड़ेगा कहां हम बेच सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी मेंटेन करने पड़ेगा, क्वालिटी और इम्प्रूव करने पड़ेगा, और वैल्यू एडेड गुड्स में हमें जाने पड़ेंगे, जिसमें हाई फैशन के जो सामान है उसको बेचिए, या तो टेक्निकली जो आरएमजी जिसे कहते हैं, टेक्निकल रेडीमेड गारमेंट, जैसे फायर ब्रिगेड को लगता है किसी तरह का कपड़ा, इस तरह के कपड़े बनाइए ताकि जिसमें मुनाफा ज्यादा हो।
तो एक वर्टिकल के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना,
बहुत डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तीसरी बात है कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जहां पे हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज आ गए थे, ऐसे कि अफ्रीकी देश, साउथ अफ्रीका हमारा कॉम्पिटिटर बन रहा था, वहां पे हमने फिर से करीबन 10 से थोड़ा कम 9.4% का बढ़त दिखाया है, 30.5 बिलियन डॉलर्स का रोजगार किया है। ये अच्छी बात है और इसको हमें करते रहने पड़ेगा। इसको करने के लिए, जैसे मैंने कहा, सिर्फ आरएमजी में नहीं, हर चीज में हमें क्वालिटी अपग्रेड करने पड़ेगा, निश मार्केट्स में जाने पड़ेगा, और दूसरी बात है नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, हमारे आसपास के बाजार तो बुरे हालत में है, तो इन सब हालातों में हमें साउथ ईस्ट एशिया पे कंसंट्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और क्या कहेंगे आप, सरकार के कौन से ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने भारत के एक्सपोर्ट लैंडस्केप को मजबूती प्रदान की है, और जो डिजिटाइजेशन हुई है, जो कहें कि सहूलियत मिली है एक्सपोर्टर्स को, छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को, लॉजिस्टिक्स जो इम्प्रूव हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं?
दो तीन चीजें हुई। एक तो पहली बात तो ये है जो आप सही बता रहे हो कि जो PLI जो स्कीम है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव बहुत सारे सेक्टर्स में काफी सक्सेस दिलाया है। एप्पल आपके पास आया है, बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। एप्पल जब हमारे पास आता है, यहाँ पे कारखाना बिठाता है, तो और 10 कंपनियां सोचती है कि अगर वो जा रहा है इंडिया में तो हम भी क्यों ना जाए। तो एक बहुत बड़ी चीज है उसका,
और उसका डाउनस्ट्रीम कंपनीज को भी,
भारतीय कंपनियों को उससे लाभ होता है। डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे थे, ई कॉमर्स से हमारे छोटे उद्योगपतियों को जरूर फायदा हो रहा है। छोटे उद्योगपतियों को बहुत किस्म के मार पड़ी है इस पिछले 10 साल में, अगर दिखे बहुत मार पड़ी है कोविड के बाद, उससे पहले और भी चीजें थी, उनको फाइनेंसेस ठीक से नहीं मिलती है, बहुत ऊंचे दर में ऋण मिलती है, तो ये दिक्कतें उनके पास है। परंतु अब उनके पास बाजार में जाने का एक प्रावधान मिल गया कि डिजिटल एरिया से वो जा सकते हैं, वो ई कॉमर्स के जरिए बेच सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से बेच सकते हैं, तो बेच भी रहे हैं। उत्तराखंड के कोई छोटा सा कंपनी वो अपनी अचार बेच रही है विश्व को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, ये हो रहा है। परंतु ये एक छोटा पैमाने में हो रहा है, इसको आप बड़ा पैमाने में करने के लिए आपको भारतवर्ष का ही अलीबाबा तैयार करने पड़ेगा।
तो जैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है सरकार का, उसमें
सोच है, ये विचार है, अभी तक संपूर्ण तरीके से हम कर नहीं पाए, परंतु हाँ आगे जाके हो सके। परंतु हमको इसके लिए काफी काम करने पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी हमें बढ़ाने की जरूरत है, हमें छोटे उद्योगपतियों को डिजिटल वर्ल्ड में लाने के लिए बहुत सारे अवसर देने की जरूरत है। मैं श्योर हूँ कि ये सरकार सोच रही है और करने की भी उनको सोच है, करेंगे जरूर।
और इस पर बहुत कार्य हुआ भी है, हमने देखा है कि जो छोटे छोटे कोने हैं हमारे देश के, कोई आम उगाने वाला किसान है वो अपने आम को एक्सपोर्ट कर पा रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक निर्माता है वो अपने जो सामान है उसको एक्सपोर्ट कर पा रहा है। सो ये जो डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आपको लगता है कि जो कारोबार है हमारे देश का, व्यापार सुगम हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स?
बिल्कुल सुगम हुआ है और आशा है कि इसके जरिए और सुगम होगा, ये हम आशा जरूर रखते हैं। परंतु इसके लिए, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए लिटरेसी का डेथ, आपका ब्रॉडबैंड का जो विस्तार, ये सब करने की जरूरत है और हम कर रहे हैं, उस पे काम जरूर कर रहा है, अमल जरूर सरकार कर रही है। आशा है कि आगे के दिनों में इसकी फायदा भारत के हर घर में मिल पाएगा। परंतु अभी भी अगर हम सोचे कि तुरंत हो जाएगा, वो हो नहीं सकता, कोई जादू की छड़ी हमारे पास है नहीं।
आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्रम्प ट्रेड टैरिफ्स की बात करी थी, तो उससे भारत को किस तरह का इम्पैक्ट होगा, भारत के एक्सपोर्ट्स को क्या चैलेंजेस उत्पन्न होंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न होंगी?
देखिए दो चीजें हैं, एक तो ट्रम्प के टैरिफ की मार हम पे संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ, यद्यपि हम एक अर्ली ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हो भी जाएगा, उससे हमको काफी फायदा रहेगा। हमने एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया, उससे फायदा है हमको, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, ये अच्छा तरीका हमने लिया है। परंतु ट्रम्प टैरिफ का और भी कहीं ना कहीं हमको मार पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजों में हमारी बिक्री जो होती थी उतनी नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ की बात छेड़ दी है, अब हर विश्व की बड़ा बाजार अपना टैरिफ वॉल्स बनाने की कोशिश करेगा, अपना ही इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन था उसको ट्रम्प ने मोटा मोटी कह सकते हैं डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब करने के कारण से ये जहां पे टैरिफ वॉल्स बनाएंगे, हमारा बिक्री पार्टी वहां पे अफेक्टेड होगा। पॉजिटिव तरीके से अगर आप देखें तो चीन पे क्योंकि ज्यादा मार पड़ रहा है, तो चीन का कुछ व्यापार हमारे पास क्यों ना आ जाए। जैसे रेडीमेड गारमेंट, चीन रेडीमेड गारमेंट में आज के दिन में भी बहुत बड़ा प्लेयर है, तो अगर हम अपना एक्ट को ठीक से कर पाए। अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र गुजरात थोड़ा हाई कॉस्ट हो गया है रेडीमेड गारमेंट के लिए, आपको जाने पड़ेगा बंगाल उड़ीसा झारखंड इन सब इलाकों में जो कि कोस्ट के पास में है, जहां की पोर्ट है आसपास में, वहां पे अगर आप बैठा के फैक्ट्री बैठा के काम कर पाए तो आप ये बाजार को पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बीट करना है बांग्लादेश को, आपको बीट करना है कंबोडिया को जो कि आपसे लोअर कॉस्ट इकोनॉमी है। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो जरूर आप विश्व के बाजार को पकड़ पाएंगे। और आपको जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की अब ये रहनी चाहिए तरकीब कि हम आगे देखें किस तरह से अफ्रीका, जहां पे कि जो स्लीपी मिशंस थे, जहां पे लोग कह सकते थे एक स्लीपी कंट्री है, ज्यादा व्यापार नहीं होता है, वहां पे भी हमें कोशिश करने पड़ेगा ताकि हमारा व्यापार वहां पे बढ़े। क्योंकि फ्यूचर जो है, ग्रोथ जो है, अगर आप देखें वो अफ्रीका में होगा, वो लैटिन अमेरिका में होगा, वहां पे एक पॉपुलेशन बूम होने वाली है, वहां पे उनकी इनकम ग्रो हो रही है। जो आज एशिया जो ग्रोथ दिखा रही है, वो ग्रोथ कल अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दिखाएगी। और ये बात चाइना समझ गई है, इसलिए चाइना इन मार्केट्स पे कंसंट्रेट कर रही है। वो बहुत दिनों से उनका अमेरिकन डिपेंडेंस घटा के इन मार्केट की तरफ देख रही है। हमको भी ये बात समझने पड़ेगा और हमको भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरफ देखने पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हमारी फैक्ट्रियां वहां पे बिठाने पड़ेंगे, बिठा भी रहे हैं, और वो आगे जाके और बड़ा करके करने पड़ेगा हम लोग।
और एक और कॉन्टेक्स्ट, भारत मार्ट दुबई में है, वो MSMEs को प्रोवाइड करता है एक अफोर्डेबल एक्सेस GCC, अफ्रीकन और CIS मार्केट्स में। तो जो हमारे मिशंस हैं बाहर के देशों देशों में वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं?
देखिए, लिबरलाइजेशन के बाद से हमारे मिशन काफी हद तक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कह सकते हैं कि वो अच्छे हो गए हैं। उनका जिस तरह से वो वार्तालाप करते हैं विदेशी संगठनों से वो बहुत देखने लायक है, वो बहुत उम्दा है और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए व्यापार ला पाएंगे। तो ये व्यापार लाने की कोशिश तो चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। हमारे ट्रकें बसें आप अगर देखे अफ्रीका के रास्ते में आजकल बड़ी कॉमन साइट हो गई है, तो हमको अब कोशिश करने पड़े कि और भी चीजें हमारी वहां पे कॉमन साइट हो जाए। तो उस कोशिश को जारी रखने पड़ेगा, जरूरत पड़े तो हम लोगों को और ट्रेड काउंसलर्स अपॉइंट करने पड़ेगा हमारे एम्बेसीज में, ताकि जो सिर्फ व्यापार के ही बारे में 24 घंटा सोचे, व्यापार के ही बारे में 24 घंटा काम करे।
और आपने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करी है, तो जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है कि नई नई मार्केट्स, नई नई कंट्रीज और दूसरी नई नई प्रोडक्ट लाइंस, जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमने काफी वृद्धि देखी है पिछले कुछ वर्षों में, ये आपको कितना सराहनीय लगता है?
देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं थे, हमारा एक कह सकते हैं नैनोलैंड मूवमेंट के हम सदस्य थे उस वक्त, इसलिए हमारी सोच विचार थी कि हम खामखामे विदेश में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जितना अपनी जरूरत है वो बनाएंगे। परंतु हमें अब समझ आया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है देश के लिए वो भी नहीं घटेगा। आप अगर 1000 राइफल बना रहे हैं अपने लिए, 500 राइफल अगर आप विदेश में बेचे, तो 1500 राइफल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर होगा देन 1000 राइफल। इसलिए हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की तरफ गए हैं और ये बहुत अच्छा एक सफल कह सकते हैं एक स्टेप जो एनडीए सरकार ने लिया है और वो बहुत अच्छा एक स्टेप है। क्यों हम अपने जो मित्र देश है उनको हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं क्यों नहीं बेचेंगे? उनको भी हमारे सस्ते दरों में बंदूक, आर्टिलरी, टैंके बेचना चाहिए, प्लेन बेचना चाहिए। तो ये हम करने की कोशिश करें। अब जहाज भी बेचने की हम सोच रहे हैं, नेवल बोट्स, नेवल जो फ्रिगेट्स कह सकते हैं वो बेच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और इसके पृथ्वी में अगर आप देखें सबसे बड़ा इंडस्ट्री तो आफ्टर ऑल डिफेंस है, तो डिफेंस से आप कैसे आप परे रह सकते हो? आपको परे नहीं रह सकते, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आप जीते हो और यहाँ पे रोजगार करना, देश के लिए रोजगार करना आपका सबसे बड़ा सर्व बड़ा धर्म है।
और सर्विसेज आपने बोला था, जो सेवाओं का क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज्यादा कहें कि वृद्धि हुई है। नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है उसमें 6% हुई है, तो इसमें 13.6%। तो ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, इसके क्या प्रमुख कारण है और आगे भी आपको लगता है कि ये आउटपेसिंग रहेगी?
आउटपेसिंग रहेगी, इसका दो कारण है। एक तो जो हम पहले करते थे, हम सिर्फ बीपीओ और कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते थे, हम उससे वैल्यू एडिशन में चलने लगे हैं। हम आजकल फिनटेक में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस रिलेटेड जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें काम कर रहे हैं। तो ये जरूरी था और आशा है कि आगे जाके और हमारे जो कंपनियां हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, जरूरत पड़े तो वो बाहर में जाके अपना कंपनी बैठाएंगे और वहां पे काम कराएंगे, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट थ्रस्ट है सॉफ्टवेयर का, हमारा जो मार्केट के ऊपर पकड़ है वो रहे। क्योंकि और भी देश पे अपनी आंखें लगाए हुए हैं, और भी देश लगाए हुए हैं बीपीओ एक्सपोर्ट्स पे, फिलीपींस वगैरह अब आगे आ गए हैं, तो वहां से हमारी बहुत ज्यादा बढ़त हो नहीं सकती है। हमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की तरफ देखने पड़ेगा, हमें और ज्यादा प्रोत्साहन देने पड़ेगा सॉफ्टवेयर कंपनियों को, ताकि वो बढ़ते रहे, नहीं तो हमारा यहाँ पे भी स्टैग्नेशन होने की एक संभावना है।
सरकार ने जो अभी हालात है पूरे विश्व में इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्टर्स को विशेष सपोर्ट देंगे, विशेष समर्थन देंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं?
देखिए, फाइनेंस एक बहुत बड़ा पहलू है, उनको फाइनेंस का बहुत सारा उनको चाहिए होता है, वक्त पे फाइनेंस चाहिए होता है, सस्ते दर पे फाइनेंस चाहिए होता है, उनको लॉजिस्टिक्स हेल्प चाहिए होता है। तो सरकार इस सारे कामों में काम कर रही है। अगर आप देखें पोर्ट्स का संख्या हमारे यहाँ पे बड़ा है, पोर्ट्स का बहुत बढ़त हुई है, पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्टर हो गया। पहले भारतीय पोर्ट्स वेर नोटोरियस कि यहाँ पे आए जहाज आए तो 6 दिन से पहले वापस नहीं आ सकता है, वो सब दिन गए। अब हमारे पोर्ट्स में क्विकर टर्न अराउंड है, हर जगह में आपका टर्न अराउंड टाइम फास्टर हुआ है। वहाँ पे गुड्स जो अब उन्होंने इस्तेमाल लिया है, इम्पोर्टेड हुए हैं या एक्सपोर्टेड हुए, उसका मेट्रिक टन्स बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो हम जो हाई स्पीड ट्रेन्स कर रहे हैं, फ्रेट ट्रेन्स कर रहे हैं, ये सब का फायदा हम लोगों को मिलेगा। दे आर ऑल लिंक्ड टू दीज पोर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में एयर कार्गो पे हमने खास तौर से एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी के जरिए एयर कार्गो में भी बहुत आप कह सकते हैं लीप्स एंड बाउंड से काफी बेनिफिट्स हुई हैं।
चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में भारत का कुल निर्यात ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंचने और आगे की संभावनाओं पर इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयंत।
धन्यवाद आपको भी।
अभी आप सुन रहे थे नए शिखर पर भारत के निर्यात विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक जयंत रॉय चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में